आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नाइन इलेवन के आतंकवादी हमलों को 25 साल हो गए हैं। करीब 3,000 लोगों की जान लेने वाले इन हमलों के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर यानी आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध शुरू किया और ऑस्ट्रेलिया भी अफगानिस्तान और इराक में युद्धों का हिस्सा बना। अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड और सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आतंकवाद का खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल रूप ले चुका है। मेरा नाम है शशि कुमार और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस रिपोर्ट में 9/11 के आतंकवादी हमले से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो कुछ श्रोताओं के लिए विचलित करने वाली हो सकती है, इसलिए कृपया सतर्कता बरतते हुए सुने।
This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Clearly, something relatively devastating happening this morning there.
इस आतंकवादी हमले में 2,977 लोगों की मौत हुई थी और हजारों घायल हुए थे, जिसके पीड़ितों में 90 से ज्यादा देशों के लोग थे। उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड अमेरिका में मौजूद थे। एक दिन पहले ही उनकी मुलाकात तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से हुई थी।
Well, I remember it very vividly. I was there. I recall doing a news conference. And it was during that news conference that the third plane hit the Pentagon. I remember pulling back the curtains. And you could see the smoke rising. From across the Potomac River, from the Pentagon.
जब अमेरिकी हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया और वाशिंगटन में लॉकडाउन था, तब हार्वर्ड ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा।
Be assured of Australia's resolute solidarity with the American people at this most tragic time.
कुछ ही दिनों में यह एकजुटता सैन्य प्रतिबद्धता में बदल गई। प्रधानमंत्री हॉवर्ड ने अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री अलेक्जेंडर डाउनर से बातचीत की और सरकार ने एंजस संधि लागू करने का फैसला किया।
The Americans were kind enough to provide me with Air Force 2. It's the first plane to leave American airspace after the attack. And it flew me from Andrews Air Force Base in Washington to Hawaii, where I was collected by Qantas flight. And it was on that flight on Air Force 2 that I spoke at length to Alexander Downer. And he suggested that what we should do as a demonstration of support for America was to invoke the ANZUS Treaty. Now, we never thought that ANZUS, which was designed for America to help Australia and New Zealand, that it would be, in a sense, the other way around.
एक महीने से भी कम समय बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई सेना भी इस अभियान का हिस्सा बनी। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा युद्ध बन गया। अगले दो दशकों में 39,000 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल कर्मियों ने अफगानिस्तान में सेवा दी, जिनमें 41 सैनिक मारे गए। हाल ही में SBS न्यूज की संवाददाता अलेक्जेंड्रा जोन्स ने John Harvard से बातचीत की।
Was there ever any hesitation about
No, I never thought there should be any hesitation. The Americans made it very plain that they valued the Australian military contribution. And of course, I always fretted about committing our military because I knew they were in danger of getting killed or badly wounded and We were to lose 41 soldiers in Afghanistan, and that's a lot for a country our size. And we paid a heavy price.
2021 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की वापसी के बाद तालिबान फिर सत्ता में लौट आया, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ अभियान सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं था। 9/11 के हमलों ने दुनिया भर की सरकारों के आतंकवाद से निपटने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। हवाई अड्डों की सुरक्षा कड़ी हुई, खुफिया एजेंसियों का विस्तार हुआ और सरकारों ने निगरानी तथा आतंकवाद रोधी नए कानून लागू किए। सुरक्षा एजेंसियों ने विभिन्न देशों में सक्रिय चरमपंथी संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर ज्यादा बारीकी से नजर रखना शुरू कर दिया। उस समय ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी एसईओ के महानिदेशक डेनिस रिचर्डसन थे।
I was at home at the time. I just got into bed. I got a phone call from someone in ASIO. Got up, turned on the TV. Like many people, saw the second plane go in. That made it obvious that there was a terrorist attack underway. I phoned the Attorney General, who was in Western Australia at the time, then went into work, like many other people, and remained there for the next 36 hours.
उस समय एसईओ में करीब 600 कर्मचारी थे, आज यह संख्या 2200 से अधिक है। रिचर्डसन कहते हैं कि इन हमलों ने संगठन की प्राथमिकताएं तुरंत बदल दी।
ASIO's world had changed. It was very clear that counter-terrorism was going to be the major preoccupation and challenge.
उनका काम जल्द ही वैश्विक स्तर पर फैल गया। ASIO ने उन ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की पहचान शुरू की जिन्होंने अफगानिस्तान और दूसरे देशों में अलकायदा या उससे जुड़े संगठनों के साथ प्रशिक्षण लिया था। रिचर्डसन बताते हैं कि इन जांचों का दायरा लगभग पूरी दुनिया तक पहुंच गया।
Following 9/11, we set out to identify all Australians who had trained with Al-Qaeda. Those investigations took us to every continent but Antarctica.
और जल्द ही आतंकवाद का खतरा ऑस्ट्रेलिया के और करीब आ गया। 9/11 के एक साल से कुछ ज्यादा समय बाद इंडोनेशिया के बाली में पर्यटकों के इलाके में बम धमाके हुए। इस हमले में 202 लोग मारे गए, जिसमें 88 ऑस्ट्रेलियाई थे। यह हमला क्षेत्रीय चरमपंथी संगठन जमाह इस्लामिया ने किया था, जिसके अलकायदा से संबंध थे। ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए आतंकवाद अब न्यूयॉर्क या वाशिंगटन में टीवी पर दिखाई देने वाली दूर की घटना नहीं रह गई थी। आतंकवाद ने उस पर्यटन स्थल को निशाना बनाया था जहां हर साल लाखों ऑस्ट्रेलियाई जाते हैं।
A huge bomb blast on the islands of Bali has killed at least 182 people in the worst terrorist attack since September the 11th. Many Australians are feared to be among the dead.
इसके बाद के वर्षों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और आतंकी हमले और साजिशें सामने आती रही और सरकारों ने आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखा। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलो और आतंकवाद विशेषज्ञ डॉक्टर लेवी वेस्ट कहते हैं कि उस दौर की एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि 9/11 जैसे बड़े और समन्वित आतंकवादी हमलों को अंजाम देना अब मुश्किल है। हालांकि उनके अनुसार उस दौर में ऐसे निर्णय भी लिए गए जिन पर आज तक बहस जारी है।
Controversies around torture or enhanced interrogation techniques, the controversies around the invasion of Iraq in 2003 and the claims of that the Iraqis had possession of weapons of mass destruction, the ongoing existence of Guantanamo Bay, there is a litany of controversies that can be considered failures in the aftermath of 2001.
अब 9/11 हमलों के 25 साल बाद जॉन हॉवर्ड का मानना है कि दुनिया पहले से अधिक असुरक्षित हो चुकी है।
Security environment is always changing, but it's fundamentally much worse than it used to be.
डॉक्टर वेस्ट का कहना है कि अब खतरे की प्रकृति बदल चुकी है।
Rather than terrorism being the sort of singular, isolated, relatively straightforward phenomenon that it had been previously, we're now looking at this kind of complex, multi-phase, multifaceted threat manifestation.
Dr. West का मानना है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में इजरायल पर हुए हमले और उसके बाद गाजा में शुरू हुए युद्ध के बाद एक और बड़ा बदलाव आया है।
I think regrettably it's been eclipsed and there is probably now a before October 7 and after October 7. 9/11 was incredibly significant and had global ramifications. I think it's pretty comfortable and pretty reasonable to put October 7 and the attacks on Israel by Hamas on the same kind of footing. We're all watching the geopolitical consequences of that play out. So yes, there is a before and after 9/11, but I think we're now moved into a phase where we're talking about before and after October 7.
ऑस्ट्रेलिया में भी यहूदी विरोध यानी एंटी सेमेटिज्म, इस्लामोफोबिया और राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा को लेकर तनाव बढ़ा है। पिछले दिसंबर बोंदाई आतंकी हमले के बाद यह सवाल फिर उभरा कि क्या सुरक्षा एजेंसियों के पास पर्याप्त संसाधन हैं?
The security environment has never been more complex and resourcing across the board for Western jurisdictions has never been more scarce.
9/11 के 25 साल बाद सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब कहीं ज्यादा जटिल चुनौतियां हैं। एलेक्स जोन्स और एसाम अल गालिब की SBS न्यूज की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया शशि कुमार ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।